السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة البقرة آيات نمبر 75 سے 83 تک کریں گے. اس کی تفسیر ہم نے پہلے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو زندہ ہوتے دیکھ کے بھی، اپنے سامنے بھی، اگر کسی کو ہدایت نہ ملے تو پھر آہستہ آہستہ دل اسی طرح سخت ہو جاتے ہیں. جب انسان مسلسل ہٹ دھرمی نافرمانی پہ لگا رہے تو پھر دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے مردہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہو چکے تھے کہ ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اب کیا تھا، مسلمان جو لوگ نئے نئے ہوئے جیسے مدینہ میں، جب اوس اور حضرت مسلمان ہوئے تو وہ لوگ تو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں یہ قبائل تھے، اوس اور حضرت، اور یہود کے بھی 3 قبائل رہتے تھے. تو یہ لوگ ان سے سنتے رہتے تھے کہ یہ وہ بتاتے رہتے تھے کہ ایسا ہی آخری نبی آئے گا. بلکہ یہ لوگ فلسطین سے یہاں پہ موو ہی اس لیے ہوئے تھے، یہودی قبائل یہاں کے نہیں تھے، یہ آ کے باہر سے یہاں بسے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کتابوں میں ہے کہ آخری نبی یہاں آئے گا. تو اتنی اچھی طریقے سے ان کو سب پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جب یہ انصار مدینہ، جن کو آپ کہتے ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کو زیادہ یہ تھا کہ یہ لوگ تو مسلمان ضرور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، اور ان کی تو کتابوں میں یہ ہمیں خود بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اور آپ کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا تھا. اور تو بہت ان کو یہ امید تھی کہ یہ تو ضرور ایمان لیں گے. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نہیں لائے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بت پرست ہیں، نہ ان کے پاس عرصہ دراز سے کوئی نبی آیا، ہزاروں سال گزر گئے، اور بت پرستی سے نکلنا زیادہ مشکل ہے. جو وہ لوگ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کے پاس کتاب بھی ہے، اور وہ اتنے کتاب والے، علم والے سمجھے جاتے ہیں، تو یہ تو لازمی طور پہ ہوگا کہ یہ ایمان لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایمان کا اس سے اکثر تعلق نہیں ہوتا کہ کون کتنا جانتا ہے اور کتنا اس کے اندر کتنی اس کے پاس علم کے خزانے ہیں، بلکہ اکثر انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے کہ اس کا اپنا اندر کیا ہے. تو اسی کے تناظر میں یہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون، یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کیا تم پھر امید رکھتے ہو، ان یؤمنوں، کہ وہ ایمان لائیں گے. وہ کون؟ یہودی علماء اور یہودی لوگ. لکم، تمہارے لیے. وقد، حالانکہ تحقیق، کان فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے. کون گروہ؟ یعنی علماء کا گروہ جو اہل کتاب میں سے ہے. یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کا کلام. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد وہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو. وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. یعنی کیا ان لوگوں نے سن لیا ہوا تھا؟ یسمعون کلام اللہ سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ کیا، یہ مراد ہے کہ جو ان کے سردار گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے سنا تھا، تو آ کے واپس کہہ دیا نہیں، وہ تو کہا گیا ہے کہ بے شک تم مانو یا نہ مانو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایسے یعنی اس میں تحریف کر دی، خود سے اس کو بدل ڈالا. या फिर जो तौरात है उसके को कहा गया कलामुल्लाह के उसके अंदर तहरीफ कर दी। और तहरीफ कैसे करते थे कि चीज़ें कोई ऐड कर दी, कोई निकाल दी, कोई खोदी, उसके कोई माने बदल दिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई माने बयान करने शुरू कर दिए। इस तरह से करके वो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर तहरीफ करते थे, चेंजेस करते थे और उसको बदल डालते थे। तो कहा गया कि तुम इनसे तवक्को रखते हो, इनका तो ये हाल है कि इन्होंने तो अपनी किताब तक को बदल दिया है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी मौजूद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाजे तौर पे आयात मौजूद थी, इन्होंने तो उसको बदल दिया। इनसे क्या खैर की तवक्को है जो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर इतनी बड़ी चेंज लाने की भी जुर्रत कर सकते हैं, उनसे आप क्या तवक्को करोगे कि ये ईमान ले आएंगे? क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे में से नहीं आए और ये तो बनी इस्माइल में से आ गए, और ये कैसे हो गया? तकब्बुर उनके अंदर इतना था, हठधर्मी इतनी थी, जिद इतनी थी, ये कैसे हो गया ये इनके अंदर से आ जाए? तो ये चीज़ ने उनको इस चीज़ पे आमादा किया कि उन्होंने आयतें ही बदल दी और इस चीज़ को तरोड़ मरोड़ के अपने लोगों को बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हालांकि उनके पास वाज़े आयात मौजूद थी। ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे आप समझ लें, एक बंदे को हमेशा उसकी वाह-वाह होती है, उसको इनाम दिया जाता है, उसको कोई पोजीशन दी जाती है, कोई पावरफुल पोजीशन दी जाती है, और एक दफ़ा उसको ना दी जाए तो वो बिगड़ जाता है कि हैं हर दफ़ा तो हर साल तो मुझे ही इनाम मिलता है और अब किसी और को दे दिया गया, मेरी जगह किसी और ने ले ली। तो यानी जब अल्लाह ताला की खातिर नहीं होता और जब अपनी चौधराहटें ज़्यादा अजीज होती हैं और दीन कारोबार बन जाता है ना, तो फिर ये होता है कि अच्छा फिर हमारा क्या बनेगा? और ये तो रसूल यहाँ पे आ गए, अब हमारी किधर चौधराहट जाएगी, हम किधर के रैबाइज रह जाएंगे? तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आयात थी उनको ही बदल डाला। और तहरीफ दो तरह से होती है, चेंजिंग ये एक लफ्जी होती है और एक मानवी होती है। यानी एक तो होता है कि अल्फाज को ही चेंज कर देना, इन्होंने दोनों की थी, और एक है माने को चेंज कर देना। आज के दौर में आप देखें कुरान करीम में कोई अल्फाज को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मन माने माने बनाना और उनको कुरान से ही अपनी बिदात को प्रूव करना, ये आज भी है कि ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो बिदतों को कुरान से ही कहते हैं कि ये देखो, और अपने मुशरिकाना अकायद को कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। जो भी कोई कर रहा है, जितने फिरके बने हुए आजकल जो गुमराहकुन फिरके हैं, वो सारे अपनी दलाइल कुरान से ही देते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कुरान काफ़ी है, बल्कि कुरान के साथ हदीस के ऊपर ईमान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हदीस ही कुरान की वजाहत करती है। अब कोई इंसान कोई खुद खड़ा होके कहना शुरू कर दे कि मैं कुरान की ये तफसीर करती हूँ और मुझे बड़ा इल्म है और देख के आयत को और तफसीरें शुरू कर दे, तो ये नहीं है जो उसकी तफसीर सही है, बल्कि असल बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे समझाया। और फिर यहाँ पे भी नहीं बात रुकती, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इससे आगे भी है, सहाबा ने उसको कैसे समझा और उसके ऊपर अमल किया। यहाँ तक जाके हम देखते हैं कि कुरान पाक में किस आयत का क्या मतलब बनता है, वरना तो इस तरह हर कोई अपनी कोई डिक्शनरी खोल के बैठ जाए और उससे करना शुरू कर दे, सलात का माना दुआ है, और फिर उसके बाद ये भी तहरीफ की गई, जैसे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, सूरह कहफ के एंड में आता है, बेशक आपको अब तो पता है इन्नमा का माना क्या है, कलमा हसर है कि मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, एक बशर हूँ तुम्हारी तरह। तो उसको कर दिया इन्ना, बेशक, माँ अलग तोड़ के माँ को अलग कर दिया, नहीं, माँ का माना नहीं का भी होता है। अब इन्ना माँ तो एक लफ्ज है, लेकिन जब इन्ना अलग कर दिया और माँ अलग कर दिया, और इन्ना बेशक माँ नहीं, मैं बशर तुम्हारी तरह, मैं तुम्हारी तरह बशर नहीं हूं, बिल्कुल उलट माना कर दिया। तो ये है मानवी तहरीफ करना कि अपनी अकीदों को प्रूव करने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर हैं और वो तो बशर हैं ही नहीं, लो जी कुरान से ही हमने आयात निकालनी। तो इस तरह से करके जो तहरीफात की जाती हैं, या कहना देखो कुरान में ला तकरबुस सलात, तो
तो आगे भी तो देखो, वान तुम सुकारा, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब 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 बात करनी हो ना, तो फिर कोई कुछ भी निकाल सकता है। देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि कत्ल करो इन मुशरिकों को, कत्ल करो इन काफिरों को, तो देखो चलो अब हम कत्ल करने चल पड़ते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, नॉट दैट सिंपल। आपको देखना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या तफसीर बताई, सहाबा ने कैसे इसको समझा और कैसे इसके ऊपर अमल किया। यहाँ तक हमारे लिए हुज्जत है ना, इसके बाद कोई हुज्जत है कि कोई खड़ा होकर कहे कि इस आयत का ये मतलब हम बताते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। जब तक कि हम सोर्स की तरफ ना जाएं, आज नए से नए लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं और डिफरेंट चीज़ों को वैसे बयान करना शुरू कर देते हैं, और हम भी जब हमें पता ही नहीं तो हमें समझ नहीं आती कि इसने तहरीफ की। वे देखें, तहरीफ की समझ उसको आएगी जिसने कुरान को पढ़ा है, सीखा है, समझा है। जब समझा नहीं होता ना, फिर कोई आपको जिस तरफ जाता है उधर हाँक ले जाता है। जैसे आप किसी रास्ते को जानते हैं तो आप कोई और कहीं किसी और तरफ आपको लेकर निकल रहा है, तो आपको पता है ये रास्ते पे सही रास्ते पे नहीं जा रहा, ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप बैठे रहेंगे कि ठीक है, जिधर भी जा रहा होगा उधर ही होगा। तो इसीलिए इल्म लेना इतना ज़रूरी है। और वो जानते थे, बात ये कि जानते बूझते ये काम करना कितना बड़ा गुनाह है, कि उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ऐसे किया। अल्लाह हू अकबर। तो इसलिए ये पहले इनके अंदर ये बुराई आई, और मुसलमानों ने इसके अंदर आज के दौर के अंदर इसी तरह अपनी किताब में मानवी तहरीफ करनी शुरू कर दी। तो हमें चाहिए कि हम इल्म लें ताकि हमें पता हो। आपको पता है जहाँ पे जहालत होती है वहीं पे फिर ये लोग डाका भी मारते हैं, और फिर वहीं पे कई मुसलमान जिनको कोई इल्म ही नहीं है, जिनको कोई पता नहीं है अपने दीन का, वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और कोई क्रिश्चियन बन रहा है और कोई कुछ बन रहा है। अल्लाह हू अकबर। अब ये लोग उस जमाने के, अपने जमाने के, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के ये लोग मुसलमान थे, ये अहले किताब ये मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये हरकतें की। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे मदीना में, वो इन इन सब चीजों को सही समझते थे, और वो भी इस तरह की मानवी और जो है ऐसी तहरीफें करते थे। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, और जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, قَالُوا آمَنَّا, तो वो कहते हैं हम ईमान ले आए। यानी जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं ये यहूदी लोग, तो वो कहते हैं तुम हमें भी तो ईमान वाला मानो ना, हम भी तो ये चीज़ों को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, आखरत को मानते हैं, हम भी यानी फरिश्तों को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, अगर दो रसूलों को नहीं माना तो क्या बाकी सबको तो मानते हैं ना, तो हमें भी ईमान वाला समझो, मानो हमें। और ये भी एक रिवायत आती है कि जो इनमें से कुछ बड़े लोग थे वो जाके सुबह को ईमान ले आते थे और कहते थे हम ईमान वाले हैं, और उसके बाद शाम को बिल्कुल उससे पलट जाते थे, ताकि लोग ये सोचें कि पता नहीं क्या बात होगी, ये इतने बड़े किताब वाले लोग, इतने इल्म वाले लोग ये पलट गए हैं, तो शायद ये दीन सही नहीं है, कुछ तो इसमें वजह होगी जो ये लोग पलटे। तो ये भी उनकी एक तरीका था लोगों को हटाने का। तो ये यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहि सलाम की जब बातें सुनते, तो मुसलमानों से कहते थे ये तो हमारा पहले से ही ईमान है, हम तो इसी तरह तो हम भी समझते हैं, हम भी यही कहते हैं। फिर जब ये अपने उलामा के पास जाते, ये जो आम यहूदी होते, वो कहते हमारी भी किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही है। वह इज़ा खला बादुहुम इला बाद, और जब ये अलहदा होते बाज उनके बाज की तरफ, कालू, वो कह कौन कहते, जो इनके उलामा होते वो इनको डांटते थे फिर, अ तो हदीसूना हम भी मा फतह अल्लाह अलैकुम, क्या तुम उनको वो बातें बताते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर खोली हैं, यानी कौन सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें और कई तालीमात जो मुसलमानों की और उनकी बिल्कुल सेम थी, तो उनकी किताब में भी वो थी, तुम उनको क्यों वो बातें बताते हो जो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने खोली, यानी तुम्हारी किताब में। तुम क्यों निशानियां, प्यारे नबी की निशानियां जो आखिरी नबी की हैं वो उनको जाके क्यों बताते हो कि हमारी किताबों में भी ऐसे लिखा हुआ है। लियुहाजुकुम बिहिंद रब्बिकुम, ताकि वो जाके झगड़ा करें अल्लाह ताला के पास तुम्हारे साथ, यानी कयामत के दिन वो अल्लाह ताला के पास जाएंगे जब, तो कहेंगे ये मैंने आपको बताया ना, लियुहाजुकुम क्या, हुज्जत तमाम करने के लिए वो वहां पे करें कहेंगे कि अल्लाह इनको तो पता था, इन्होंने हमें बताया था कि हमारी किताब में भी है, फिर भी ये नहीं माने। तुम सोचते नहीं हो, तुम अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो कि तो ये कयामत के दिन देखना तुम्हारे साथ ही झगड़ा करेंगे, ये वहां पे अल्लाह ताला को बताएंगे तुम्हारी ही शिकायतें, तो इनको मत बताओ कि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है। यानी कैसी बातें, क्या ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं पता कि इनके दिलों में क्या है। अफला तकिलून, तो वो एक दूसरे को कहते थे तुम्हें अक्ल नहीं है, क्यों जाके तुम मुसलमानों को ये हकीकतें बताते हो, तुम्हारे खिलाफ ही कयामत के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यानी उनको पटियां पढ़ाते थे इस तरह कि तुमने उनके सामने कुछ नहीं बताना, और वो कभी कह देते थे इस तरह, या तो कभी अपने नंबर बनाने के लिए मुसलमानों के आगे कह देते थे कि हम भी वाकई हम भी यही मानते हैं, या फिर इतनी अकल नहीं थी तो कह देते थे कि हम भी ये मानते हैं, वाकई हमारे पास भी यही लिखा हुआ है, और जन्नत जहन्नम कयामत और ईमान लाने के बारे में और ये सब चीज़ें और पिछले अंबिया के बारे में ये सारी ही हमारी किताबों में, तो वो कहते थे मत बताओ मत बताओ, वरना वो ये जाके अल्लाह ताला को कहेंगे इनको पता था फिर भी ये नहीं माने। तो यानी देखें, मान वो सकता है जिसको ये हो कि मैंने हक को सामने आ जाए तो उसको अपना लेना, लेकिन वो शख्स जिसने पहले ही फैसला कर लिया हो कि मैंने नहीं मान के देना चाहे जो भी हो जाए, उसको आप दिन के वक्त सूरज के सामने भी खड़ा कर देंगे और कहेंगे दिन है, तो वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं मानता ये तो रात है, आप उसको मनवा नहीं सकते ना जिसने फैसला कर लिया हो। अवला यालमूना, क्या इनको नहीं पता, अन्नल्लाह यालमु मा युसिरून व मा युलिनून, कि अल्लाह ताला को तो पता है ना जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। ठीक है, तुम मुसलमानों से छुपा सकते हो ये बात कि मुसलमानों को तो बताओ ही ना कि हमारी किताबों में क्या लिखा, लेकिन अल्लाह ताला से कैसे छुपा सकते, उसको तो पता है ना जो छुपाते हो तुम और जो जाहिर करते हो, और जो तुम इस वक्त एक दूसरे से ये बातें कर रहे हो कि अल्लाह ताला को नहीं पता। अब आप देखें कि सुबहान अल्लाह, किसी ने एक दफा कहा कि जब कुरान की तरफ बुलाया गया तो उसने कहा मैं तो इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि अमल तो हमने करना नहीं है, तो फिर अगर हमने पढ़ लिया तो फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि भाई तुमने अमल क्यों नहीं किया, तो इसलिए हम पढ़ते ही नहीं हैं ताकि अमल करना ही ना पड़े, और हम उस दिन कह देंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो क्या ये सोचते हैं अल्लाह ताला नहीं सुन रहा इस वक्त, यानी ये सोचते हैं अल्लाह ताला को नहीं पता इनकी गुफ्तगू का कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों के हाल नहीं जानता कि ये क्यों नहीं पढ़ना चाहते कि अमल ना करना पड़े, वो तो अमल नहीं करेंगे तो क्या कयामत के दिन कह देंगे जाके हमें तो पता ही नहीं था, तो क्या इनका ये एक्सक्यूज माना जाएगा। कोई आपसे लाइसेंस ले ले, अब रोड टेस्ट दे के लाइसेंस ले लेता है और उसके बाद कहे ओहो मुझे तो पता ही नहीं था रेड लाइट तोड़नी है ये तो एक जुर्म है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं क्योंकि जानना ही नहीं चाहते थे। तो ठीक है, लोगों को तो शायद बेवकूफ़ बना सकते हो ये कह के कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन आप सोचते हो अल्लाह ताला नहीं सुन रहा तुम्हारी ये बात, जिस वक्त तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि हम इसीलिए नहीं पढ़ते कि हमें अमल ना करना पड़े, तो अल्लाह ताला को ट्रिक करना चाहते हो, अल्लाह ताला को चाहते हो कि जैसे लोगों को मैं इस तरह बहाने करके उनको बहला फुसला के उनको बस अपनी उसमें कायल कर लेती हूँ, जैसे लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं, तो हम अल्लाह ताला के सामने बातें करके और उसके सामने भी अपना रोना रो लेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था या अल्लाह हम क्या करते, तो हमारा सुन लिया जाएगा, और वो इस वक्त नहीं देख रहा कि तुम क्या कह रहे हो। बिल्कुल इसी तरह वो वहां पे एक दूसरे से बातें करें, क्या वो ये नहीं देख रहे अल्लाह ताला को तो पता है ना ये तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है और तुम्हें पता भी है। देखिए बार बार ये बात आती है ना कि वो उनको पता था, असल में पता हो के फिर उसके बाद इंसान जानबूझ के ये कर रहा है, तो फिर क्या, जबकि सबको पता है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, हर मुसलमान को पता है, फिर वो इससे बच बच के निकले और उसको कोई अहमियत ना दे और इसको ना सीखने की तरफ आए कि अच्छा सीखेंगे तो अमल करना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला उनके ये एक्सक्यूजेस को सुन लेगा, और उस दिन जाके बताएंगे तो उसको पहले पता ही नहीं होगा कि इन्होंने किस वजह से नहीं सीखा। तो वो कहते हैं आफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है क्यों ये काम करते हो। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारी छुपी खुली सारी बातें जानता है, और वो ये भी जानता है कि तुम इस वक्त बैठे क्या बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अगर वो समझते हैं वो दुनिया में इस तरह तहरीफात करते रहेंगे, हक को छुपाते रहेंगे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, नहीं, हमारे तो नहीं ये लिखा हुआ, हमारी किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला को भी समझ नहीं आएगी क्या? नाउज़ु बिल्ला। अल्लाह अकबर। इनका असल में हाल क्या है? व मिनहुम, और इनमें से उम्मीयून, उम्मी हैं लोग, अनपढ़ हैं, उम्मी अनपढ़, जो माँ के पेट से बस पढ़ा हो उसको कहते हैं उम्मी। उम्मी हैं, ला यालमून अल किताब, वो नहीं इल्म रखते किताब का, इल्ला मगर सिवाय किस चीज के, अमानी, अमानी का, मनयून से है, जिसको कोई तसव्वुर कायम कर लेना उसी से अमानी है, कि ऐसे ही अपने जहन में कोई खुद साख्ता, खुद ही से कोई तसव्वुर बना लेना कि ये ऐसे होगा, ये यकीनन ये होगा, ऐसे होगा। ये अब आम आवाम की बात हो रही है, पहले किसकी थी? ये वो जो उनकी ट्रिक्स बताई गई, वो कि हम ऐसे कह दें और तुमने ऐसे नहीं कहना, और तुमने, हालांकि इनको उनको पता था, ये उनके उलमा की बातें, उलमा को पता ही था, तभी तो हजरत सलमान फारसी को आप देखें किसने बताया था, वो भी एक आलिम थे जो फौत हो रहे थे, और जब इन्होंने पूछा कि अब मैं किसके पास जाऊं, तो उन्होंने कहा वहां पे जाओ, वो खजूरों की जगह है जहां पे काले पत्थर हैं और खजूरें हैं, तो काली चट्टानों का पता किया कि कौन सी जगह है जहां पे काली चट्टाने हैं और खजूर के दरख्त हैं, तो पता चला यसरब है। तो फिर वो मदीना आ गए ताकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करें, और जब आप आए तो आप पर ईमान लेकर आए। तो देखिए ये इतना साफ और वाजे था। यहाँ से हमें ये पता चला कि ये लोग जो भी कर रहे थे ना, ये ऐसे नहीं था बेचारों को पता नहीं था उनको, वो क्या जानते होंगे, नहीं, बल्कि ये वो लोग थे जो हक को पहचानते थे फिर भी उसको चेंज करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी हिर्स थी ना कि ये लोग ईमान ले आए, कि बार बार इनको बताते थे बार बार कि शायद किसी तरह ये मान जाए, शायद किसी तरह ये मान जाए। तो अब ये इसमें देखें, ये इन आयात में मुसलमानों को भी तसल्ली दे दी गई और इन लोगों की हकीकत बता दी गई कि ये लोग बिहाइंड द डोर्स क्या बातें करते हैं, और तुम इनसे आप तमाम मत रखो, तुम ना उम्मीद रखो इनसे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि हर एक को यानी कोशिश होती थी कि हर एक को पैगाम पहुंच जाए और हर एक जहन्नुम से बच जाए। आपको वो हदीस पता होगी कि एक बच्चा था, लड़का था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, यहूदी था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। तो जब कुछ दिन वो नहीं आया तो आपने उसके बारे में पूछा, तो पता चला वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के लिए गए तो वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था और आखिरी दमों पे था, तो आपने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़के ने बाप की तरफ देखा, बाप को नजर आ रहा था कि बच्चे का अब आखिरी वक्त है, तो उसने कहा अबुल कासिम की बात मान लो। तो बच्चे ने कलमा पढ़ लिया। अब बाप खुद नहीं माना मगर बच्चे को कहा, इसलिए क्योंकि खुद की तो अपनी बहुत सारे अपने लालच और बहुत सारी अपनी दुनिया की चीजें, मफाद था जो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बच्चा दुनिया से जा रहा है, आपने उसको कहा तुम पढ़ लो। इतना ज्यादा इनको पता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो आप इतने खुश थे कि अल्लाह ताला ने इसको आग से बचा लिया मेरी वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक के लिए हरीस होते थे और ये जानते बूझते फिर यही करते थे। और यहाँ से ये भी हमें पता चला ना कि कलाम अल्लाह यहाँ पे कहा गया, कुरान पाक को भी कलाम अल्लाह कहा गया और यहाँ पे तौरात को भी कलाम अल्लाह कहा गया, लेकिन हमें ये यहाँ से वाजे हो गया कि अल्लाह के कलाम में इन्होंने चेंजेस की हैं और जानबूझ के की हैं। ठीक है, अब आम आवाम का क्या हाल है? इनमें उम्मी है, आम आवाम अक्सर ऐसा ही होता है कि ये भेड़ बकरियों की तरह ही होते हैं, जिधर इनको ले जाओ उधर चल पड़ते हैं। अब आम आवाम का हाल क्या था, इनको किताब का कुछ नहीं पता, बस पढ़ना जानते हैं, इनके तिलावत कर ली, इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ के किताब में क्या है सिवाय तिलावत के। वा इन हुम इल्ला या दुनून, ये सिर्फ गुमान ही है इनके, ख्वाहिशात और गुमान। यानी ख्वाहिशात क्या, जिधर को इनके उलमा ने इनको लगा दिया ना कि बस आप यहूदी हो तो आप जन्नत में जाओगे, आपको तो अल्लाह ताला के लाडले हो, आपको तो कभी कोई आग छुएगी नहीं, आगे आएगा कि आग छुएगी भी तो बहुत थोड़े दिन, विशफुल थिंकिंग एक। यानी कोई नॉलेज नहीं है इनके पास अल्लाह ताला की किताब का, आम अवाम का ये हाल है। अगर कुछ पढ़ा भी है उसके अंदर से तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब है। ला यालमूनल किताब, अल्लाह अकबर। और विशफुल थिंकिंग ऐसी है, ख्वाहिशात ऐसी हैं, और खुद ही खुद साख्ता अपने ही एक जहन के अंदर बनाया हुआ है कि हम जन्नत में पहुंच जाएंगे और हम तो बच जाएंगे और हम तो बड़े महबूब हैं और ऐसी बातें। ये सस्ते नुस्खे इनके उलमा इनको बेचते थे, क्योंकि इससे अमल तो बदलना नहीं होता था। यहाँ जैसे आपको पता है कि इन्होंने रजम की आयात को भी निकाल दिया था उसके अंदर से, कि जिना जानी जो शादीशुदा जानी है उसको रजम कर दिया जब, वो निकाल दिया था। तो यहूदी आलिम इनको ये चीज़ें सिखाते थे कि ये ऐसे ऐसे, और ये आंखें बंद करके उसको कबूल कर लेते थे और उनके ऊपर नजरानों की बारिश करते थे, इधर से नजराने आ रहे हैं, उधर से नजराने आ रहे हैं, और वो भी खुश वो भी खुश, उनको भी सस्ता नुस्खा मिल गया, इस तरह ही जन्नत में चले जाना है तो फिर क्या मसला है, कुछ अमल करने की फिर क्या जरूरत है। और सजाओं से भी बचा लेते थे उनको कि हाँ हाँ नहीं नहीं इसको देखो इस तरह से। लेकिन जब तहरीफ करनी हो ना, जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज सी चीज को बयान कर देना, ये बड़ा ही पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप कहें बैठो मत उठो, अब मैं आपको कहूँ ना बैठो मत उठो, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, अब इसमें क्या मैंने कहा है कि बैठ जाएं उठे नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ बैठो मत उठो, तो अब क्या माना हो जाएगा? बिल्कुल उलट, बैठो मत अब है कि उठ जाओ, तुम बैठो नहीं। तो इस तरह की आप मिसालों से समझें कि इस तरह से ये तहरीफात करते थे और उनको फिर बता देते थे, वो आगे से खुश हो जाते थे, उनको अपना मकसद मिल गया, उनको दुनिया मिल गई अपनी, यानी पैसा मिल गया, बड़ी इज्जतें मिल गई, बड़े मशहूर हो गए। मशहूर लोग उन्हीं के पास ज्यादा जाते हैं ना जो उनकी मर्जी के उनके मतलब के फतवे दे दें। तो ये भी आंखें बंद के करके कबूल कर लेते थे। आज भी देखिए ना, ऐसे अनपढ़ों का, ऐसे उम्मी लोगों का हजूम है उम्मते मुस्लिमा में, जिनको दुनिया के उलूम पे तो बड़ी दस्तरस हासिल है, जिनको दुनिया के उलूम में तो बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि उनकी किताब में क्या लिखा है। अब उनके सामने अल्लाह के कलाम को कोई कैसे करके बयान करे, कोई चर्ब जुबान है, कोई बड़ा तेज है जुबान का, ऑडियंस को ग्रैस्प कर लेता है उनकी अटेंशन, बस जी ये वाह 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 क्या तकरीर उसने की है, अब वो जिससे हमारे दिल खुश हो जाए, बस तकरीरों पे वाह वाह, बस लेक्चर्स के ऊपर वाह वाह, और उठे और कपड़ा झाड़ के फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पता। उसने भी इनको खुश कर दिया कि कोई फिक्र ही ना करो तुम सारे ठीक हो, और ये भी यही चाहते थे सुनना, जो कोई हक बोले उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। तो इन उनका भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। जब क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कौन सी जमीन मुझे अपने ऊपर रहने देगी और कौन सा आसमान मुझे पनाह देगा अगर मैं कुरान की किसी आयत के बारे में अपनी समझ से या अपनी राय से कोई तफसीर बयान कर दूं, मेरी क्या जुर्रत है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरी क्या जुर्रत है, और वो लोग अपनी किताबों से ही तौरात से ही लोगों को ऐसे ऐसे फतवे देते थे, ऐसे ऐसी बातें कहते थे कि बस वो लोग खुश हो जाते थे।
अल्लाह ताला ने इसका ये मतलब किया, इसका ये मतलब किया। अब लोगों को जब कुछ पता ही नहीं है, वो उम्मी है, तो फिर जाहिर है अब वो भी उन्हीं बातों को लेके, और उन्होंने अपने जहन में बना लिया हुआ था कि हमने तो अब जन्नत में जाना ही है। तो हम इसी आईने में अपने आप को देखें कि कुरान जिंदगी की किताब है, इसको बगैर जाने हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमें कोई भी कह देता है ना जी, खास तौर पे मैं देखती हूँ जब कोई फौत होता है तो फिर कितने लोग होते हैं, अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कर लो, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं जो जिसने कह दिया। जाहिर है जब इल्म ही नहीं है तो सुनी सुनाई बातों पे ही चलेंगे ना, तो सुपरस्टिशियस बातें, रस्मों रिवाज की बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 2.5 पारे पढ़ लो तो ये राहदारी के हो जाएंगे, कोई कह रहा है सूरह मुल्क पढ़ के पीछे भेज दो, कोई कहता है कब्रों पे जाके आप उसके ऊपर बैठ के आप कुरान पाक पढ़ते रहो वहां पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हम बस हर एक का सुन के और बस चल पड़ते हैं, क्योंकि हमें कोई इल्म नहीं है, बस विशफुल थिंकिंग है, बस हम उम्मत मोहम्मद से हैं, अब हमारा क्या बिगड़ सकता है। वो भी उम्मीद थे, अल्फाज को तो समझते थे, अल्फाज को आता था उनको पढ़ना, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो मुसलमान को यहां से पता चलता है कि नहीं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुरान को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो अमल कर सकते हैं। दुनिया के अलूम के ऊपर हम कितने साल जिंदगी लगा देते हैं ताकि इसके अंदर हम एक्सपर्ट हो जाएं, अगर उसका 1% टाइम भी हम कुरान को दे दें तो इसकी समझ आ जाए, वो जिसने आखरत में काम आ जाना है। अल्लाह अकबर, दावे तो हमारे सबके बहुत है, हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, रसूल से बड़ी मोहब्बत है, मगर अल्लाह ताला के कलाम को सीखना समझना वो हमारी लिस्ट में ही नहीं है प्रायोरिटीज की, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, इसीलिए फिर बिदात में पड़े हुए, इसीलिए शिरकिया काम हो रहे हैं हमारे अंदर, इसलिए बदअमलियां हैं। तो इल्म होना बहुत जरूरी है। सोचें आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो डॉक्टर है नहीं, और आप अपनी बीमारी बता के और कहें कि मुझे कोई नुस्खा दे दो, वो क्या करेगा आपको, वो तो आपको किसी और तरफ ही लगा देगा। तो अगर हम सही होना चाहते हैं तो हमें कुरान की तरफ आना है, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें, नीम हकीमों की बातें सुन के और बस उस तरफ चल पड़े। तो ये समझे कि हमारे असलाफ क्या करते थे, वो लोग इस चीज को समझते थे कि हमने कुराने करीम को समझ के पढ़ना है और सीखना है इसको, इसी वजह से वो इसके ऊपर वक्त लगाते थे। और हमें पता चलता है हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, कुरान इसलिए नाजिल किया गया कि इसको समझ के पढ़ा जाए और अमल किया जाए, लोगों ने इसकी तिलावत को ही अमल बना लिया, लोगों ने समझा कि यही अमल है कि हम तिलावत कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सूरह बकरा 12 साल में मुकम्मल की थी, क्यों? उनके पास तो बहुत अच्छे हाफिजे थे, क्यों 12 साल लगे? इसलिए कि वो पढ़ते थे, समझते थे, फिर उसको अमल में लेकर आते थे, और जब मुकम्मल की थी तो एक ऊंट जिबा किया था, नहार किया था। इब्ने कय्यम ने कुरान को छोड़ने की जहां पे अकसाम बताई हैं, वहां पे एक ये भी है कि कुरान को समझ के ना पढ़ना और ना गौर व फिक्र करना। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हम लोग 10 आयात सीखते थे, फिर आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ते थे जब तक इन 10 का माना ना समझ लें और उन पर अमल ना कर लें। तो तब माना समझते थे, अमल करते थे, तब आगे जाते थे। इसीलिए 3 रात से कम में कुरान पढ़ने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि इससे कम पढ़ेंगे तो समझे बगैर पढ़ेंगे, और समझना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि समझ आएगी तो पता चलेगा कि ये क्या कहता है, और अगर समझ ही नहीं है, अल्लाह हू अकबर, तो फिर यही हाल होगा कि जैसे हम रमजान में 4 4 दफा 3 3 दफा कुरान पाक खत्म कर लेते हैं, और एंड में कोई पूछे हमसे आपने क्या पाया, क्या सीखा, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं सीखा, क्या पाया इसमें से, कुछ भी नहीं। अल्लाह हू अकबर। मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि मैं रात से लेकर सुबह तक सिर्फ 2 सूरतें जिलजाल और अलकारिया, गौर व फिक्र से पढ़ता रहूं, ये मेरे लिए इससे बेहतर है कि मैं पूरा कुरान बगैर गौर व फिक्र के जल्दी जल्दी पढ़ लूं। इसी तरह इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में सबसे फायदेमंद चीज और इसकी निजात का सबसे आसान रास्ता ये है कि कुरान में गौर व फिक्र करे, इसके आयात के मानी समझे, उसके ऊपर जहन लगाए, तवज्जो करे। ये आला दर्जे की इबादत है। और देख लें, जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद बिन काब ने क्या फरमाया, दो सूरतें भी मैं पढ़ लूँ ना और इनके ऊपर गौर व फिक्र करता रहूँ, ये बेहतर है। क्योंकि जब गौर व फिक्र करेंगे उनके ऊपर तो कुछ हासिल होगा, कुछ चेंज आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफला या तदब्बरुल कुरान, तुम कुरान के ऊपर तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात एक एक आयत को दोहराते रहते थे, जिनमें आखरत का कोई जिक्र होता वो आपको रुला देती थी। बार सूरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो ये सिर्फ कुरान की तिलावत वो कर रहे होते तो थप थोड़ी ऐसा हो सकता था, तो समझने से होगा ना। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के घर में बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं और उसको समझ के पढ़ते पढ़ाते हैं, इसका मुजाकरा करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, रहमत इलाही उनको ढांप लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला के पास मौजूद फरिश्तों दरमियान उनका जिक्र खैर किया जाता है। ये सिर्फ तिलावत से नहीं, ये इंसान गौर व फिक्र करे, समझे भी। हम तो अगर समझने दौरा कुरान के लिए बैठते हैं तो आधा टाइम सोए रहते हैं, पता ही नहीं कितना आगे निकल गया, और वो स्पीड में भी पढ़ते जाते हैं जो दौरा कुरान करा रहे होते हैं। इतनी स्पीड होती है कि जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना, कभी बैठ के तदब्बुर करने का मौका ही नहीं मिलता। साल में एक दफा खोलना है वो भी इस तरह का, तो ये इसकी मंशा नहीं है, ये इसका तरीका भी नहीं है, और ना ही ये रिक्वायर्ड है हमसे। देखिए क्या रिक्वायर्ड है, कि हम चाहे एक दफा पढ़ें मगर समझ के पढ़ें, समझ के। आयशा रजी अल्लाह तआला ना, उनके एक दफा नमाज में खड़ी नहीं थी, उनके भांजे आए तो देखा नमाज में खड़ी हैं और पढ़ रही हैं, फमन अल्लाह अलैना वक़ाना अज़ाब सुमूम, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें बचा लिया अजाब से, इस लू के अजाब से हमें बचा लिया। और वो खड़े में खड़े में खड़े में वो पढ़ती जा रही है, यही बात यही आयत दोहराती जा रही है, दोहराती जा रही है। और सोचा मैं जाके ना जरा बाजार से हो आता हूँ, वापस आऊंगा तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या। वो बाजार चले गए, वापस आ गए, देखा वहीं खड़ी, वो ही पढ़ती जा रही है अभी तक। तो देखिए वो लोग उसको समझते थे, उसको दिल पे लेते थे, हमारे दिल पे उतरता ही नहीं, क्योंकि जब इतनी तेजी दिखा रहे हैं कि बस खत्म करना है, कितने कितने सफ़े रह गए, आगे पेज आगे पलटा पलटा के देखते हैं कितने सफ़े रह गए, अच्छा इतने रह गए, फिर एक पारा खत्म हो जाएगा, ताकि मैं फख्र कर सकूं कि मैंने इतने कुरान खत्म कर लिए। तो जब भी तो हम फिर ख़त्म पे ख़त्म भी करते हैं, तब भी हमारे अमल में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे दिल की हालत में भी नहीं फ़र्क पड़ता, हमारा ईमान भी नहीं बढ़ता। जबकि बताया गया कुरान करीम में कि जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं उनके दिल तो पिघल जाते हैं कुरान सुनते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हमारे कहाँ आंसू बहते हैं, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो स्पीड पकड़ी होती है। और इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है, मैं तो 25 मिनट में पारा ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा तुम्हारी इतनी स्पीड है, तो वो कुरान इसलिए तो नहीं आया था। वो भी ऐसे ही करते थे कि उनकी बस एक एक जहन में उन्होंने समा रखा था कि बस हमने ये कर लिया तो बस सस्ती एक शोहरत, ये जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट्स, बस ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो चलो जी हमने शॉर्टकट्स ले लिए और बस अब हम भी बस बख्शे बख्शाए हैं, हमने भी शॉर्टकट्स बनाए हुए ना, ये 2.5 पारों का क्या है, शॉर्टकट ही है ना, उस जिंदगी में उसने कभी पढ़ा नहीं, अब वो दुनिया से चला गया, अब उसको हम भेज रहे हैं यहाँ से 2.5 पारे राहदारी के हैं। अल्लाह जाने कौन सी राहदारी है जो इनको पता होंगी। सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है, भाई आपको खुद पढ़ने पे बचाती है, ये नहीं कि आप दूसरों के पीछे भेज रहे हो। हमारे घर में बरकत हो जाएगी, आ जाओ कुरान का खत्म कर लेते हैं, लेके लोगों को जमा कर लिया, खुद किचन में खाना बनाते रहे, सर पढ़ने के ऊपर इनको लगा दिया, उसके बाद खाना दिया और चलो फारे, या दुल्हन के सर के ऊपर लेके तो करके तो उसको रुखसत किया। बरकत रहेगी भाई इसकी जिंदगी में, और बरकत उसके पढ़ने से रहेगी। हमारे भी वही तरीके नहीं कर लिए जो इनके थे यहूद के, ये इनको किताब का कोई इल्म नहीं है, बस अपने खुद साख्ता, वो एक बहिश्ती दरवाजा है उसके नीचे से गुजर जाओ,
उसकी वो लाइन लगी होती है, इतनी लंबी लाइन वो जी खुलता ही साल में एक दफा, और उसके अंदर से गुजर गए आप, हमें क्या मुश्किल है, हम कोई अमल करें। जब इस तरह की खुद साधन अपने जहन से खुद ही बनाई हुई चीजें, घड़ी हुई चीजें, ये अवाम में मशहूर कर दी जाती हैं, अवाम को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो कोई अमल करे, कोई क्यों सच बोले, कोई क्यों ईमानदारी के साथ जिंदगी अपनी मुश्किल में डाले, कोई क्यों हलाल के ऊपर जिए, कोई क्यों अपनी नजरों को नीचा करे, क्या जरूरत है करने की, बहिश्ती जेवर दरवाजे से ही निकलते जाओ सब। तो अक्ल करें, हम वही काम कर रहे हैं जो यहूद ने किया। तो ये उम्मी है, अनपढ़ है, यानी अल्लाह ताला के नजदीक आप अनपढ़ हैं, चाहे आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, अगर आपने इस किताब का इल्म नहीं लिया, ला यालमून अल किताब, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये किताब का इल्म नहीं रखते। आज अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, किताब का कोई इल्म नहीं है, लेकिन समझते हैं हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कौन है, और जिनके पास किताब का इल्म है ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं उनको। तो इनके पास जब किताब का इल्म नहीं होगा तो अमानी ही होगी, याद रखें, क्योंकि किताब का इल्म आपको हकीकत में लेकर आता है, ये असलियत क्या है, और जब नहीं होता तो फिर आप भी हवाओं में ही रहते हैं कि हाँ बस ये कर लिया तो भाई ये मिल जाएगा, हम तो बस बखिया बखिया हैं, हम भी उम्मत मुस्लिमा में से हैं, उस दिन हमने आपसे सलम का दामन पकड़ के चले जाना है और ऐसे होना है, पढ़ के तो देखो उन्होंने क्या फरमाया, और इन्हु मिल्ला या तो नून, वो गुमान में ही है, अपने गुमानों में ही रहते हैं कि हम तो बस पार हो जाएंगे, दिमाग में हर एक ने अपने कोई ना कोई बनाया हुआ, कोई जहन में कोई चीज रखी हुई है। अब जाहिर है जब इल्म ही नहीं होगा तो गुमान ही होंगे ना, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे, एजम्पशंस पे, इसको गुमान एजम्पशंस पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचें जरा, हमेशा की जिंदगी एजम्पशंस पे गुजारना कितनी बड़ी हमाकत है। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून, तो वैल है किन के लिए, जो लिखते हैं, अल किताब भी ऐदीम, अब किताब को अपने हाथों से, यानी वो लोग क्या करते थे कि इधर उधर के किस्से कहानियां भी किताब में लिख दिए, अपने फतवे भी लिख दिए, इधर से उधर तरोड़ मरोड़ भी दिया, जो तारीख के वाकयात भी वो भी उसमें डाल दिए, इस तरह से करके उन्होंने तो किताब का कुछ उलिया ही बदल के रख दिया, किताब तो वो रही ही नहीं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। सुमा ये कुल ना, फिर लोगों कहते हैं फिर ये नहीं बताते कि ये जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये मैंने ऐड की है, कहते हैं हाजा मिन इंदिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये देखो किताब में भी लिखा हुआ, क्यों ऐसे करते हैं, लियश्तरू बिही समनन कलीला, जैसे मैंने आपको कहा मकसद क्या होता है, दुनियावी फायदे, कि हमें नजराने मिले, हम फेमस हो जाए लोगों के अंदर, शोहरतें इसी तरह मिलती हैं ना, जो आलिम मुफ्ती लोगों के ऐसे फतवे देता है लोगों को जिसमें वो उनको आजादी मिल जाए, हाँ जी कोई बात नहीं, आप मिक्स गैदरिंग करें, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने ऐसे बैठे कोई इस तरह, और पर्दे वगैरह की क्या जरूरत है, तो पर्दे तो उस जमाने में होते थे ना, वो जिस वक्त ऐसे होता था कि वो मुनाफिक होते थे उस जमाने में, इसलिए पर्दे थे, और किसी ने तो कहा सूद भी, सूद उस जमाने में वो इसलिए था, लोग पिस जाते थे कर्जा लेके, तो सूद इसलिए हराम किया, अब वो वाला सूद थोड़ी है, अब तो ये बैंकों का, हत्ता के एक ने तो ये तक कहा कि खिंजीर उस जमाने में बड़ा ही गंदा जानवर होता था, अब तो ये देखो साफ सुथरे हैं, वो साफ सुथरी जगहों पे उनको रखते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो अब तो थोड़ी ही है, या अल्लाह, यानी कहाँ से ये बातें निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, वही बात है कि ला यालमून अल किताब, किताब का इल्म नहीं, और फिर जाते भी ऐसे लोगों के पास हैं जहां से उनको मनमाने फतवे मिल जाए, तो कहते हैं वो भी उनको क्या कहते हैं, हाँ अल्लाह ताला ने तो ये देखे इस तरह थोड़ी है, वो तो उस जमाने में ऐसे था, अब तो ऐसे है नहीं, और ये लोग ऐसे ही करते थे लोगों को, कि अपने मफाद की खातिर लोगों के मुताबिक उनको फतवे दे दिया करते थे, और उसको मंसूब अल्लाह की तरफ ही करते थे, कोई ये नहीं कहता मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, अल्लाह ताला की किताब में ही ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया आज भी बिदात जो हैं या जितने भी शिरकिया अकायद हैं सारे कुरान से उन्होंने कहीं ना कहीं से ढूंढे हैं, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो इस्माइली हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो कब्रों को पूजने वाले हों। अल्लाह ताला ने फरमाया वैल है उनके लिए, तबाही है, बर्बादी, और वैल जहन्नुम की वो वादी है जिसमें कहा जाता है अगर पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल जाए। तो ऐसी वादी है, इतनी ज्यादा वो हीटेड प्लेस है कि जहन्नुम भी उससे पनाह मांगती है। वो इतनी खौफनाक जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर तहरीफ करते हैं, अल्लाह ताला के कलाम में चेंजेस करके मनमानियां करते हैं। देखें ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए इसका अजाब भी इतना शदीद है कि जहन्नुम की उस वादी में डाला जाएगा। आप सल्लम ने फरमाया वैल जहन्नुम में एक वादी है, काफिर इसमें 40 बरस तक उतरता चला जाएगा तब भी उसकी तय तक नहीं पहुंचेगा, इतनी खौफनाक वादी है। तो क्यों है इतनी बड़ी सजा? देखें हम आम से लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन हमारे नाम से कोई जाके बात किसी को कह दे वो जी वो ये कह रही हैं तो हमें कितना गुस्सा आएगा। भाई मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुमने मेरी बात पे जाके एक बात बना ली और इस तरह से कर दिया। हम इंसान होते हुए अपने लिए गवारा नहीं करते, तो अल्लाह ताला की कलाम के अंदर ऐसी बात करना ये कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, एक मामूली बात नहीं है। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के नाम पे लगा के कोई बात बोलते वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई बात लगा के कहना, ये जब तक आप पूरा कंफर्म ना हो मत कहें। कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है, जबकि वो कुरान में लिखा होता है, तो फिर जब इल्म ही नहीं है तो क्यों बोलते? और उन्होंने तो तहरीफ कर दी ना बाकायदा, कि उन्होंने तो खुद ही अपने हाथों से लिखा और कह दिया ये अल्लाह ताला ने लिखा। जो इन्होंने कमाई की है ना, जो भी फायदे उठाए हैं इन्होंने, दुनिया के थोड़े से फायदे ही मिल गए ना, ये भी बहुत थोड़े, समनन कलीला इसको कहा है, बहुत थोड़ी कीमत है। चाहे वो दुनिया जहान के भी उनको खजाने दे दें ना लोग, तब भी बहुत थोड़ी कीमत पे इन्होंने बेचा, इसलिए कि इसके बदले में जो अजाब है वो बहुत सख्त है। तो तुमने ये कीमत लेके अपने लिए वो अजाब मोल ले लिया जो इतना खौफनाक है, तो ये बहुत बड़ी जसारत है जो कोई करता है।